أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو اور ہم سب کو بہترین کاموں کی توفیق عطا فرمائے. ہم کچھ مزید بات کریں گے گناہوں کے اثرات پہ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر تو نہیں آتی لیکن ان کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں. انہی میں سے ایک چیز گناہ ہے. گناہ کو اگر آپ ایک دھبے کی طور پہ محسوس کریں, کہیں بھی کسی کپڑے پہ کوئی سٹین لگ جائے, کوئی دھبا لگ جائے, بس اس کو گناہ سے سمجھ لیجئے گا. کپڑا نیا نہیں رہتا, دھونا پڑتا ہے. بعض دفعہ اس کا اثر پھر جاتا ہی نہیں, اور وہ سارے مراحل جو کبھی بھی کسی جگہ سے داغ یا دھبے کو دور کرنے میں آپ نے کیے ہوں ذہن میں لے آئیے. بالکل اسی طرح گناہ بے احتیاطی سے ہوتا ہے. پچھلے لیسن میں ہم نے دیکھا تھا کہ یا سستیاں ہوتی ہیں, بندہ یا خواہشوں کے نشے میں چور ہوتا ہے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ مجھے اللہ کی نافرمانی کرنی ہے. کوئی بچہ یہ کہہ کر گناہ نہیں کرتا کہ امی کی نافرمانی کرنی ہے, میری ماں مجھے کہے کہ یہ میرا نافرمان ہے, یہ نہیں کچھ آتا. ورنہ تو آپ دیکھیے نا کہ پھر تو ساری جھجک اور سب کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے نا. لیکن خواہش, یعنی جو چیز ہم نے پڑھی ہے ابھی تک, خواہش, خواہشوں کا نشہ ایسا سر پہ سوار ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر بندے کو یہ بھول ہی جاتا ہے کہ ماں ناراض ہو رہی ہے, کہ رب ناراض ہو رہا ہے. پھر بدنامی کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں جو ہوگا ہوگا, کرنے دو, کہنے دو, میں تو چور ہوں نشے میں. تو بالکل جس طرح کسی کا نشہ ٹوٹا ہو اور وہ اس نشے کے پانے میں اندھا دھند ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بھاگتا پھرتا ہے نا, اسی طرح گناہوں کا جو نشہ ہے نا, وہ بندے کو ارد گرد سے بے نیاز کر دیتا ہے. اور یہ نشہ بھی اسی طرح چھٹے گا جیسے دوسرے نشے چھوڑے جاتے ہیں. محنت کرنی پڑتی ہے, مشکل میں پڑنا پڑتا ہے. عربی کی ایک کہاوت ہے کہ نفس دودھ پیتا بچہ ہے. اگر کوئی ماں اپنے بچے کا دودھ چھڑانا چاہتی ہے تو ایک دم چھڑانا پڑے گا. اگر یہ سوچتی رہے نا کہ اچھا تھوڑا سا دے دوں, پھر بچہ روئے گا, پھر تھوڑا سا دے دوں, تو کبھی نہیں چھوڑے گا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب کسی بھی وجہ سے بچے کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو اس کو پھر تھوڑا سا رونا پڑتا ہے, ورنہ بچہ کبھی ماں کو نہ چھوڑے, چاہے وہ 4 سال کا کیوں نہ ہو جائے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ ان چیزوں کے رستے میں رکاوٹ نہ بنے کہ ہم اور ہی مزید گناہ کرتے جائیں. کیونکہ گناہوں کا کرتے ہی رہنا, مزید گناہ پہ گناہ کرنا, یہ اور بھی زیادہ غفلت کی بات ہے. پھر اسی طرح ہم نے دیکھا غلبہ شہوت. شہوت کا جب غلبہ دماغ پہ آتا ہے نا, تو اس کے بعد پھر سب بھول جاتا ہے. بعض دفعہ انسان اپنے سگے رشتہ داروں کے سامنے اس طرح کے کام کر رہا ہوتا ہے کہ جو عام حالات میں کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پہ غور و فکر کی توفیق دے. اور اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ یہ گناہ جو ہوتے ہیں نا, یہ کیئرلیس ایٹیچیوڈ کا ایک رویہ بھی ہے. گناہ کا سبب غفلت ہے. ایسے ہی بین کھلا چھوڑ دیا تو سیاہی لگ گئی. کیئرلیسلی کچن میں کام کیا تو سالن کے دھبے پڑ گئے. تو کیئرلیس لوگ بہت برے ہوتے ہیں. آج جس بات سے ہم شروع کریں گے وہ ہے, مخلوق کی بجائے خالق کو راضی کرنا چاہیے. کہہ لیجئے کہ لوگوں کو خوش کرنے کا شوق ہمیں گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اور آپ اس ایک تعریف کے اوپر جتنا بھی غور کر سکے ضرور کیجئے گا بعد میں. اکثر ہمارے گناہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کی خوشی کس میں ہے, لوگ ناراض تو نہ ہوں, لوگ 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 لوگ, اور ہم ان لوگوں کا نام لے لے کے لوگوں کے رب کو ناراض کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ترجیحات کو بدل دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے دے کہ ہم اس کی نظروں میں سچے ہو جائیں. عقل مند انسان ہر حال اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے, اگرچہ مخلوق اس سے ناراض ہو. ہائی لائٹ کریں اور ایک ساتھ ہی سوال بھی کر لے خود سے, کیا میں عقل مند ہوں؟ ہمارے ہاں عقل مند اور وائز اور جینیس کس کو کہتے ہیں؟ جو 2 کے 10 بنا لے, خوب بات کر سکے, کلیور, سمارٹ, کریٹو, پروڈکٹیو. اور اللہ کہتا ہے عقل مند وہ ہے ہر حال میں اللہ کو راضی کرے. دیکھیں اللہ کو راضی تو بہت کرتے ہیں, کرنا بھی چاہتے ہیں, بٹ یہاں وہ نہیں ہے بات. یہاں جو ہائی لائٹڈ پوائنٹ ہوگا وہ ہے ہر حال میں. یہ بڑا مشکل ہے. कि कुछ लोग तो ये एटीट्यूड दिखाते हैं कि आप यहाँ भी अल्लाह को राज़ी करें, अब ये भी फिक्र लगी रहे कि अल्लाह राज़ी है कि नहीं, ये कोई वक्त है ऐसी बातों का? जाएंगे उम्रे पे कर लेंगे राज़ी, आ रहे हैं रमज़ान कर लेंगे, नहीं। तो अल्लाह ताला हमें अक्लमंद बना दें, अगरचे मखलूक इससे नाराज़ हो। जो शख्स मखलूक को राज़ी करने के लिए खालिक को नाराज़ करेगा, लिखें इसको, अल्लाह ताला इस शख्स के दिल में इसकी नफरत डाल देगा। जिसको राज़ी करने की कोशिश में हक ताला की नाफरमानी की है, यानी रिएक्शन होगा 100% अपोजिट, जो सोचा था वो नहीं। वो और आप कई लोगों से सुनेंगी, बड़ी कोशिश की फलां को खुश करने की, वो नहीं खुश हुए। फलां को राज़ी करने की बड़ी कोशिश की, वो नहीं राज़ी हुए। तो बल्कि राज़ी नहीं होंगे, यहाँ ये लिखा है कि नाराज़ होंगे वो आपसे। जैसा कि ताहिर बिन हुसैन और मामून रशीद का वाक़या है कि ताहिर बिन हुसैन ने मामून को खुश करने के लिए इनके भाई को बेदर्दी से कत्ल किया, मगर मामून इससे ना सिर्फ ये कि राज़ी ना हुआ बल्कि इसको नापसंद करने लगा। चुनाचे वाक़े में आता है कि एक मरतबा ताहिर बिन हुसैन मामून और रशीद के पास आया तो मामून इसको देखकर रोने लगा। ताहिर ने कहा, अल्लाह ताला आपको रोने से महफूज फरमाएं, आप क्यों रो रहे हैं? मामून ने कहा, मैं एक ऐसे मामले के मुतल्लिक रो रहा हूँ, अगर इसको जाहिर कर दूँ तो जिल्लत और रुसवाई है, अगर दिल में पोशीदा रखूँ तो बायसे गम है, दोनों हालतें मेरे लिए बायसे परेशानी हैं। ताहिर मामून के पास से उठकर बाहर चला गया और मामून के खादिम खास हुसैन नामी शख्स को 200 दिरहम देकर कहा कि तुम किसी तरह मामून से रोने की वजह मालूम करो। चुनाचे हुसैन ने मामून को खाना खिलाया। मामून ने कहा, हुसैन पानी पिलाओ। हुसैन ने कहा, जनाब मैं इस वक्त तक आपको पानी का गिलास पेश नहीं करूँगा जब तक आप अपने रोने की वजह मुझे नहीं बताएंगे, और आप जानते हैं कि मैंने अब तक आपका कोई राज फाश नहीं किया। मामून ने कहा, तुम क्यों पूछ रहे हो? हुसैन ने कहा, आपके रोने की वजह से मैं गमगीन हुआ और इस गम ने मुझे आपसे पूछने पर मजबूर किया। तो मामून और रशीद ने कहा, ताहिर को देखकर मुझे अपना भाई मोहम्मद याद आ गया और गम ने मेरी गर्दन को दबा दिया, तो गम को हल्का करने के लिए चंद आंसू बहाए, तो जान ले मेरी ये नापसंदीदगी ताहिर को ले बैठ गई। हुसैन ने यह सूरत हाल जब ताहिर को बताई तो वह अहमद बिन अबी खालिद के पास गया और कहने लगा, आप मेरे साथ नेकी का एक मामला कीजिए, इसका बदला ज़ाया नहीं होगा। वो ये कि मुझे किसी तरह मामून की नज़रों से ओझल कर दें या किसी दूर दराज इलाके में भेज दीजिए। अहमद बिन खालिद ने कहा, मैं इसकी तदबीर करूंगा। ये कहकर अहमद बिन खालिद मामून के पास जाकर कहने लगा, मैं आज रात बिल्कुल नहीं सो सका। मामून ने कहा, वो क्यों? अहमद ने कहा, क्योंकि आपने गस्सान बिन अब्बाद को हरासान का वाली मुकर्रर किया है। वो और इसके साथी बददमाग किस्म के लोग हैं, कहीं वहाँ के लोग इनके खिलाफ बगावत न कर बैठें। मामून ने कहा, फिर आपकी राय में इस काम के लिए कौन मुनासिब है? अहमद ने कहा, इस काम के लिए ताहिर बिन हुसैन ज़्यादा मौजू हैं। तो मामून ने ताहिर के नाम खरासान की गवर्नरी का फैसला कर दिया। यूँ ताहिर खरासान का वाली बना। कुछ मुद्दत के बाद जुमे के खुतबे में मामून के लिए दुआ करना छोड़ दिया। तो मामून के खबर रिसान ने कहा, आपने मामून के लिए दुआ क्यों नहीं की? तो ताहिर ने कहा, याद नहीं रहा। आप इसकी इत्तला मामून को मत दीजिए। लेकिन दूसरे और तीसरे जुमे में भी इसने मामून के लिए कोई दुआ नहीं की। तो खबर रिसान ने कहा, अब इत्तला देना मेरे लिए ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हो सकता है कि कोई ताजिर या कोई और शख्स मुझसे पहले मामून को इसकी इत्तला दे दे। यानी उस दौर में भी लोग ऐसे ही करते थे ना कि खुतबों में और जुमों में हुक्मरानों को याद रखते थे दुआओं में। ये कहकर इसने सारा किस्सा मामून को लिख भेजा। तो मामून ने अहमद बिन खालिद को बुलाकर कहा, तुमने ताहिर को मेरी नज़रों से दूर कर दिया और ये बात हर वक्त मेरे दिल में खटकती है। अब तुम खरासान से ताहिर को मेरे पास नहीं लाओगे तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। चुनाचे अहमद बिन खालिद ताहिर को लाने के लिए चला। रास्ते की सख्त दुश्वारी और शदीद बीमारी के बावजूद थक हार कर जब मुकाम री पहुंचा तो ताहिर के मरने की इत्तला मिली। देखिए अल्लाह को नाराज करके मखलूक को राजी करने का इंजाम क्या हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी बात। बात यही है अंदर कि अल्लाह को राजी कीजिए, बंदे भी राजी हो जाएंगे। अल्लाह को नाराज करेंगे ना तो बंदे कभी भी आपसे राजी नहीं होंगे। और ये की वर्ड्स हैं, ये गोल्डन सेइंग्स हैं। अगर इसके ऊपर आपने मैंने अमल शुरू कर दिया ना तो आप देखिएगा कि ये अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी ज़िंदगी में खुशियों का एक नया दरवाज़ा खोलेगी और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। अब इसका अपोजिट भी देख लीजिए, लेकिन इसके बिलमुकाबिल मखलूक की नाराज़गी की परवाह किए बगैर खालिक को राज़ी करने और हक का साथ देने का नतीजा ये होता है कि अल्लाह ताला इस शख्स से राज़ी हो जाता है। वज़ीर इब्ने हबीरा ने मुझे बताया कि एक मरतबा अल मिस्तर शुद बिल्ला, जो इस वक्त खलीफा नहीं बने थे, अभी वली अहद थे, उन्होंने मेरे पास एक ख़त भेजा और कहा कि इसके मज़मून की इत्तला मेरे वालिद को नहीं होनी चाहिए। मैंने ख़त खोले बगैर ख़त लाने वाले से कहा कि मेरे अंदर ना इस ख़त को पढ़ने की ताकत है ना जवाब देने की हिम्मत, गोया मैंने इस ख़त पर अमल नहीं किया। जब अल मुस्तरशिद वो खलीफा बना तो मैंने इनकी खिदमत में हाजिर होकर कहा, मेरी सच्चाई और इखलास की सबसे बड़ी दलील वो है जो मैंने तेरे वालिद के मुकाबले में तुझे तरजीह ना दी। तो इसने कहा, यह बिल्कुल दुरुस्त है, आप अपने ओहदे वजारत पर बरकरार रहें। यानी इसने सच बोला, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी वजारत कायम रही। एक और वाकया एक दोस्त बयान करते हैं। एक दफ़ा कुछ लोगों ने अपने कर्जों को हासिल करने के सिलसिले में ख़जाने की तलाशी लेने का मुतालबा किया तो खलीफा अल मुस्तरशुद ने ख़जाने के सरबराह से कहा कि दूसरी चीज़ों की हिफाजत और नुकसान ना पहुंचाने की शर्त पर इन्हें इजाज़त दे दो। तो सेक्रेटरी ख़जाना ने अदालत से इजाज़त लेने के लिए काजी इब्ने अरोतबी को बुलाया और बादशाह का हुक्म सुनाया तो इब्ने अरोतबी ने फैसला देने से इनकार कर दिया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बादशाह ने इसकी इजाज़त दे दी है। इब्ने अरोतबी ने कहा, मैं क्या करूँ, यानी बादशाह ने दिए तो दे, मैं तो नहीं दे रहा। इस पर फिर दूसरे काजी को बुलाकर बादशाह का हुक्म सुनाया तो उसने ऐसा करने की इजाज़त दी। जब इसकी इत्तला खलीफा अल मुस्तरशिद को हुई तो जिस काजी ने खलीफा के हुक्म के मुताबिक फैसला दिया था इसको माजूल कर दिया गया और इब्ने अर-रुतबी जिसने बादशाह के खिलाफ फैसला दिया था इसका शुक्रिया अदा किया और मनसब पर बरकरार रखा, क्योंकि खलीफा समझता था कि इब्ने अर-रुतबी का फैसला हक पर मबनी है। इसी तरह एक मरतबा बादशाह ने खुद को शहनशाह कहलवाने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में उलमा से सवाल भी पूछे, फतवे लिए, जिस पर उलमा ने जवाज का फतवा दिया, यानी कि जवाज मौजूद है, मगर इमाम अल-मावरवर्दी ने फतवा देने से इनकार किया और शहनशाह कहलवाने की इजाज़त ना दी। मगर फिर भी बादशाह के यहाँ इनकी कदर ज़्यादा थी। इस जैसे बेशुमार वाक़ियात हैं। तो क्या सीखा? हर हाल में खालिक को राज़ी करने और इसकी बेहतर अतात करने की सही करनी चाहिए, अगर से मखलूक नाराज़ हो, इसलिए कि जब अल्लाह ताला राज़ी हो जाए तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर अल्लाह को नाराज़ करके मखलूक को राज़ी करेंगे तो अल्लाह ताला मखलूक को तुझसे नाराज़ करेगा, तो ये बड़ी नाकामी होगी। क्या पता चला, लोगों के दिल रहमान की दो उंगलियों में है। अब आप इसको ज़रा से अपने इर्द गिर्द के हालात पर टली कीजिए। बीवी चाहती है शौहर मुझसे राज़ी रहे, बच्चे चाहते हैं माँ बाप हमसे राज़ी रहे, शौहर चाहता है बीवी मुझसे राज़ी रहे, ससुराल वाले मुझसे राज़ी, महके वाले मुझसे राज़ी, दोस्तें मुझसे राज़ी, उसका एक ही रास्ता है, रब राज़ी तो जग राज़ी। अपने रब को राज़ी कीजिए, आंखें नीचे झुकाकर सीधे चलते जाइए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की पुकारों के साथ अल्लाह की तरफ चलते जाए। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयाहदीन, मैं तो जा रहा हूँ अपने रब की तरफ और वो मुझे रास्ते भी ज़रूर दिखाएगा। अल्लाह ने मूसा को मदीन में जाकर भटकने नहीं दिया, कत्ल के मुकदमे में गए थे और बीवी बच्चों के साथ नबूवत लेकर मिस्र में आए। तो अल्लाह पे नज़रें लगाइए, यही आपकी ज़िंदगी का सरमाया है और इसी से फ़ायदा उठा लीजिए, अल्लाह ताला आपसे मुझसे भी राज़ी हो जाए। अच्छा, कई दफ़ा हम दूसरों की खुशी ना खुशी पर रोते हैं ना, और ये सच है, जिससे हमें मोहब्बत होती है ना हमें उसकी केयर भी होती है। जो बीवियाँ अपने शौहरों से प्यार करती हैं ना, वो कभी सोचती भी नहीं कि उनके शौहर उनसे नाराज़ हों, यही शौहरों का भी होता होगा, इल्ला ये कि थोड़ी सी लापरवाही होगी। आप उस वक्त भी ये सोचा करें कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मुझसे कोई राज़ी नहीं है, बेफिक्र हो जाएं, ठंडा दूध पी के सो जाएं। यकीन कीजिए, अगर आप वाकई हक पे हैं, अल्लाह आपको राज़ी कर देगा और उनको भी आपसे राज़ी कर देगा जिनकी नाराज़गी से आप परेशान हैं। तो अगला टॉपिक है उम्र रसीदा, यानी ज़्यादा उम्र जब हो जाती है, बंदा पहुंच जाता है ख़ास उम्र तक, उम्र रसीदा लोगों के लिए एक नसीहत। कितना अहमक और कम अकल है वो शख्स जिसको मालूम नहीं कि मौत कब आएगी और इसके लिए तैयारी भी नहीं कर रहा, وہ شخص تو احمق تر اور غافل ترین ہے جس کی عمر 60 سال سے متجاوز ہو گئی، یعنی اس کے قریب پہنچ گئی، اوپر آ گئی 60 سے، اور میدان موت اور میدان کارزار میں قدم رکھے ہوئے ہے، مگر اس کے لیے تیاری نہیں کی۔ میدان جنگ میں کودنے والا تو تیاری کر کے قدم رکھتا ہے۔ شعر ہے عربی کا، جوان تو یہ کہہ کر غافل ہیں کہ شاید بڑھاپے میں جا کر گناہ چھوڑ دیں گے، مگر بوڑھے کیا کہتے ہیں، وہ کہاں جا کر گناہ چھوڑیں گے۔ قال الشباب لعلنا فی شیبنا ند الذنوب فما یقول الا الشیب۔ تو حیرت کی بات ہے نا، جب عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بھی گناہوں کی کشش کم نہ ہو۔ اللہ بڑھاپے میں ہنسی مذاق چھ مانی دارت، یعنی بڑھاپے میں بھی ہنسی مذاق چھچور پن ہو رہا ہے، کامیڈی میں گھسے ہوئے ہیں، ڈرامے فلموں کی فکشن کی لت ہے، کس بات کی خوشی؟ دنیا تو اس کو چھوڑ چکی ہے، اعصاب کمزور ہو چکے ہیں، رائے اور خیال میں بھی فتور آ چکا ہے۔ 60 سال عمر کے مکمل ہونے کے بعد انسان کے پاس بچتا ہی کیا ہے؟ اس عمر میں بھی غافل رہا تو گناہوں کو کب چھوڑے گا؟ کس وقت موت کے لیے تیاری کرے گا؟ اگر 70 سال کی عمر کو پہنچنے کا طمع ہو تو بھی کوئی خوشی کی بات نہیں، بلکہ اس عمر میں صحیح طریقے سے چلا بھی نہیں جائے گا۔ اگر چل بھی لے تو لڑکھڑا کر چلے گا، بیٹھے گا تو سانس پھولنے لگے گا۔ دنیا کی خواہش دیکھ تو لے گا، مگر ان کو کرنے پر قادر نہیں ہو سکے گا۔ اگر کھانا کھا لے گا تو ہاضمہ ساتھ نہیں دے گا، پیٹ کے اندر گڑبڑ شروع ہو جائے گی، اور اگر بیوی کے ساتھ تعلق کا ارادہ کرے گا تو اس کو ایزا پہنچائے بغیر کچھ نہیں کر پائے گا۔ اگر کچھ ہو بھی گیا تو طویل مدت کے بعد بھی قوت بحال نہیں ہو سکے گی، وہ تو قیدی جیسی زندگی ہے۔ اور اگر 80 سال کی تمنا ہو، اس میں جا کر تو چلا بھی نہیں جائے گا، بلکہ بچوں کی طرح پاؤں پاؤں چلنے پر مجبور ہو جائے گا۔ عقل مند اور ذی ہوش انسان عمر کے ان احوال کو پیش نظر رکھ کر بچپن ہی سے اس کی فکر کرے گا۔ یہ ہوش مندی اور دانش مندی کی علامت ہے کہ بچپن ہی سے اکتساب کہتے ہیں کسب سے نا کمانا، اکتساب مکارم اخلاق اور حصول علم وقت صرف کرے۔ یعنی مراد کیا ہے؟ عقل مند وہ ہے جو بچپن سے ہی اچھے اخلاق سیکھے اور اسے عمل کرے اور علم حاصل کرنے میں وقت لگائے، اور سن بلوغ یعنی پیوبرٹی کی ایج کو پہنچے تو سمجھ لے کہ یہ زمانہ خواہشات نفس کے ساتھ سخت مقابلے اور حصول علم کا ہے۔ جب اولاد کی دولت نصیب ہو تو خیال کرے، یہ معاملات کے کسب کا وقت ہے، اور عمر 40 سال کو پہنچے تو تمام کو خیر بات کہہ کر موت کی تیاری میں لگ جائے۔ ہر ایک تو 40 سے اوپر ہے، وہ سوچے اس جملے کو، کیا 40 کے بعد ہم موت کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں؟ اور سوائے وطن اصلی کے شوق کے کوئی اور خواہش نہ رکھے۔ یہ اصلی وطن کون سا آپ کا؟ میرا، ہمارے اماں ابا کا وطن۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ آدم کو جنت میں بھیجا تھا نا شروع میں، وہی ہمارا اصلی وطن ہے۔ اور آخرت کے لیے ذخیرہ اکٹھا کرنے میں لگ جائے، ہر لحظہ اور ہر آن دنیا سے کوچ کرنے کی تیاریوں میں ہے، اور جب 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو مکمل طور پر سفر کی تیاری میں لگ جائے، اور عمر کے ہر ہر لمحے اور ہر ہر لحظے کو انتہائی غنیمت جانے، خصوصاً جب کہ ذوف کی زیادتی یعنی کمزوری کی زیادتی اور عمر کی کمی ہو، عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ محنت میں بھی اضافہ ہو، اور 80 کی دہائی یعنی 80s میں داخل ہو تو الوداعی کیفیت ہو، اس لیے کہ اب سابقہ کمی پر افسوس کے علاوہ اور کچھ باقی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے چشم بینا اور دل بیدار کی دعا ہے کہ ایسی بیداری نصیب فرما جو غفلت کی نیند سے مکمل بیدار کر دے، ویک اپ کال، اور ایسے اعمال صالح کی توفیق نصیب فرما جو موت کے وقت ندامت اور شرمندگی سے محفوظ کر دے۔ کتنا سٹرونگ میسج ہے اس سے ایک چھوٹے سے آرٹیکل کا۔ تو پھر ہم خود اگر بڑی عمر کے قریب پہنچ گئے، یا پھر ہمارے ارد گرد جو بڑے ہیں موقع مناسب دیکھ کر ان سے اس بات کو شیئر کیجئے۔ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں، دل نہیں مانتا۔ جیسے آج کل ہمارا دل نہیں مان رہا کہ وبا پھیلی ہوئی ہے، हम सोचते हैं अभी और मज़े कर ही लें, थोड़े से थोड़ा और इन्जॉय कर ही लें। जितना ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब रहेंगे ना, आपका दिल इस दुनिया से उतना दूर होगा और आप खुश महसूस करेंगे। खुशी, जितनी खुशी आपके दिल में होगी ना, आप उतने मसरूर मुतमईन दिखेंगे। और हम अपने लिए बिल्कुल सिक्योर महसूस करते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पे ये वक्त नहीं आएगा, नहीं अभी बहुत वक्त है। अल्लाह करे ऐसे ही हो, लेकिन तैयारी तो बहरहाल करनी है। अगला टॉपिक देखते हैं, मरातबे गुनाह। बहुत अहम टॉपिक है, मरातब मरतबे से राताबा मरातिब। मासी यानी गुनाह, छोटे हों या बड़े, सब कबीह और बुरे हैं, मगर बाज़ मासी यानी गुनाह बहुत ही बुरे हैं। चुनाचे जिना बहुत सख्त कबीह गुनाह है, मगर पड़ोसी के साथ जिना करना सख्त तरीन गुनाह है और कबीह तरीन फेल है। बुखारी और मुस्लिम में इरशाद नबवी है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, ए अल्लाह के रसूल, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो आपने इरशाद फरमाया, अपने खालिक के साथ किसी को शरीक करना। मैंने अर्ज़ किया, इसके बाद फरमाया, नादारी के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल करना, यानी खाएंगे कहाँ से और बच्चे ना हो तो बेहतर है ये सोच। मैंने अर्ज़ किया, इसके बाद कौन सा है? फरमाया, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करना। इमाम बुखारी ने अपनी तारीख में हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद की रिवायत नकल की है, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करना 10 औरतों से जिना करने से भी बदतर है, और अपने पड़ोसी के घर से चोरी करना 10 घरों में चोरी करने से भी सख्त गुनाह है, और इससे भी बढ़कर सख्त गुनाह बूढ़े शख्स का जिना करना है। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला बूढ़े जानी से सख्त नफरत करता है। इसकी वजह यह है कि तबई शहवत तो ख़त्म हो चुकी होती है, इसमें ऐसी कुव्वत नहीं रहती जो इस पर गालिब आ जाए और जिना पर मजबूर करें। ये तो महज इनादन मासियत है, इसको लिखिए इनादन। इनाद क्या होता है भला? यानी दिल में एक रखी हुई है ना बात, एक्सेप्ट नहीं करे, जान के इरादा करके कि मैंने तो ये गुनाह करना है, यानी कह लेंगे ये जानते बूझते किया हुआ गुनाह। और सोना चांदी और रेशम का इस्तेमाल भी गुनाह के मुशाबे है, खसूसन बूढ़े शख्स के लिए बतौर जीनत के चांदी की अंगूठी का इस्तेमाल बहुत बुरा है। इसी तरह रिया और लोगों के सामने खुद को बुजुर्ग मुत्तकी और परहेजगार जाहिर करना भी गुनाह की इस किस्म में दाखिल है। और इसी तरह सरीख सूदखोरी खसूसन मालदार और गनी के लिए इंतहाई बुरी है। इसी तरह बुढ़ापे में तवील बीमारी में मुबतला होने के बावजूद गुनाहों से तौबा ना करना और कर्ज अदा ना करना और साहिब हक को हक देने की वसीयत ना करना बहुत कबीह और बुरा है। और यह भी कबीह तरीन फेल है कि तलाक की कसम खाकर हानिस होने के बावजूद बीवी के साथ एकामत करना, यानी तलाक भी दे दी और फिर भी बीवी के साथ ताल्लुक कायम रखते रहे। इस किस्म के नतायज इनादन खिलाफ वर्जी के जुमरे में आते हैं। इनका करने वाला अल्लाह की रहमत से दूर और हमेशा के अजाब का हकदार होता है। मेरे ख्याल में शराब नोशी भी गुनाह की इस किस्म में दाखिल है, इसलिए कि शराब अपनी ज़ात के एतबार से कोई लजीज और कोई ख्वाहिश वाली चीज़ नहीं है, इसलिए कि इंतहाई बदबूदार और बदजायका होती है। इसकी लज्जत तो पीने के बाद, इसकी कड़वाहट को चखने के बाद नशे की सूरत में महसूस होती है। ऐसे गुनाह का इर्तकाब करना जिसकी तरफ तबीयत मायल ना हो और मजबूरी ना हो, ये मुआनदत है। क्या पता चला? नाद वही जो ऊपर लफ्ज है ना, यानी जब उजर कोई भी नहीं फिर भी आप गुनाह कर रहे हैं तो ये डिटाई है। अल्लाह ताला से ऐसे ईमान की दुआ है जो हमारे और हमारे गुनाहों के दरमियान हाजिज और हायल हो, यानी रुकावट बन जाए, और ऐसी तौफीक मांगते हैं जिससे अल्लाह ताला की रजा नसीब हो। तो खुलासा क्या निकला कि गुनाह के दर्जे होते हैं, करीब वालों के साथ गुनाह करना और बुरा होता है। देखिए मुहर्रमात, जहाँ हुरमत की दीवारें हैं, उनके साथ जिना इससे भी बुरी चीज़ है। इसलिए हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तेरी किसी हद के करीब ना चली जाऊँ। शैतान किस तरीके से एक इंसान को लम्हा लम्हा कदम कदम अपनी तरफ लेके आता है, ये इंसान को पता भी नहीं चलता। तो जब तक अल्लाह का खौफ ना हो, अपने इंजाम की फ़िक्र ना हो, तब तक इंसान इन चीज़ों की परवाह करता भी नहीं है। अपने लिए मेयार बनाइए। इस बात को कि मैंने कभी भी ऐसा कोई गुनाह करना नहीं है कि जिसके किए बगैर गुजारा हो सके। इसलिए कि कुछ चीज़ों से बंदा बच सकता ही नहीं है, लेकिन कुछ से बच सकता है। और आप मैं अगर बच सकते और नहीं बचते तो कह लीजिए ये फिर इनाद है, ये हम जानबूझ के अपने साथ लगे हुए हैं। पूछिए खुद से, वाकई मजबूर होती हूँ जब कोई गुनाह करती हूँ, या बस चस्का? ये जो है ना चस्का भी होता है, बस सारी उम्र झुकिया गुनाह तो अब छोड़ें कैसे। तो बुढ़ापे के गुनाह जवानी के गुनाहों से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगला टॉपिक है उलमा के अंदर पाए जाने वाले अमराज। अल्लाह की पनाह, अल्लाह इल्म वालों के पर्दे भी रखे और रसवाई से बचाए। ये लिखते हैं कि मैंने अक्सर उलमा और जाहिदों की हालत का जायज़ा लिया तो मुझे महसूस हुआ वो अंदरूनी किब्र में मुब्तला हैं। इसको हाईलाइट करें, यानी ज़ाहरी किब्र एक और होता है ना, तकब्बुर, बड़ाई। कुछ लोग अंदर से बड़े होते हैं। इनमें से बास मरीज की इसलिए आदत नहीं करते कि वो खुद को इससे बेहतर समझते हैं। बास ने वसीहत की है कि मुझे मेरी मस्जिद की एक तरफ में दफन किया जाए, इस ख्याल से कि मारूफ करही की तरह मेरी कब्र भी मज़ार बन जाए। ये खुफिया मर्ज इंतहाई हलाकत खेज है, अक्सर लोग इससे वाकिफ नहीं होते। इशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मन जन्ना अन्नहु खैरो मिन गैरिही फ़कत तकब्बरा, जिसने खुद को दूसरों से बेहतर समझा इसने तकब्बुर किया। मैंने अक्सर लोगों को देखा कि वो खुद पसंदी के मरस में मुब्तला हैं। खुद को दूसरों से बेहतर समझने वाला किस हैसियत से सबसे बेहतर समझता है? अगर इल्म की वजह से है तो इससे पहले बहुत उलमा गुजर चुके हैं जो इल्म के लिहाज से इस पर कई गुना फौकियत रखते थे। अगर इबादत की वजह से खुद को बड़ा समझ रहा है तो ये भी सिर्फ इसका कमाल नहीं, क्योंकि और भी बहुत बड़े बड़े जाहिद और इबादत गुजार लोग गुजरे हैं। अगर इसकी वजह माल की कसरत है तो माल तो फी नफसी ही कोई दीनी फजीलत देने वाला ही नहीं। अगर वो कह दे कि पहले गुजरने वालों से मुझे क्या सरोकार, मैं अपने ज़माने के लोगों से ज़्यादा अमल रखता हूँ, तो इससे कहा जाएगा कि हाफिज़े कुरान, हम तुम्हें ये नहीं कह रहे कि तुम खुद को इस आदमी की तरह समझो जो आधे कुरान का हाफिज़ है, या आलिम को ये नहीं कहते कि तुम अमल में आम लोगों की तरह हो या आम लोगों की तरह खुद को समझो, बल्कि ये कहते हैं कि मोमिन से खुद को बेहतर ना समझो अगरचे वो इल्म में तुमसे कमतर ही क्यों ना हो। ये बहुत अहम बात है। देखिए इल्म आए और ईमान भी बढ़े ना, फिर तो मज़ा है। कई लोग पढ़ के लिख कर भी इतने आमिल नहीं होते, इतना ईमान पक्का नहीं होता, पुख्ता नहीं होता अल्लाह पे, जितना एक सच्चे मोमिन का होता है। तो फिर हमेशा अपने आप को चेक कीजिए, इसलिए कि कबूलियत और बेहतरी मानवी चीज़ है और सूरत इल्म और इबादत से दूसरों पर बेहतरी का दावा दुरुस्त नहीं है। जो शख्स अपनी आदत और गुनाहों पर नज़र करेगा वो यकीनन जान लेगा कि वो किसी से बेहतर नहीं है, बल्कि खुद को दूसरों से कमतर समझेगा। इसके ज़रिए उजब से भी बच जाएगा, और उजब यही होता है खुद को अच्छा समझना, सेल्फ प्रेजिंग। और मोमिन की शान तो यह है कि वो हर वक्त अपने नफ्स को हकीर समझता रहे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से कहा गया कि जब आपका इंतकाल होगा तो आपको आपके हुजरे में दफन करेंगे, तो फरमाया मैं इसका अहल कहाँ। इसका अहल समझने से तो गुनाहगार हालत में जाना भी बेहतर है। एक राहिब ने ख्वाब देखा कि कोई इससे कह रहा है कि फ़लाँ मोची तुझसे बेहतर है, तूने इससे पूछा कि तेरा क्या अमल है? इसने बताया कोई बड़ा अमल तो नहीं है। ख्वाब में फिर इससे कहा गया जा इसके पास जाकर पूछ तेरे चेहरे की चमक किस वजह से है। इसने दोबारा इसके पास जाकर पूछा तो उसने कहा क्योंकि मैं हर मुसलमान को खुद से बेहतर समझता हूँ। तो इसको बताया गया बस इसके कमाल की वजह यही है। तो अल्लाह ताला आपको मुझे अंदरूनी किबर से बचाए। बहुत खौफजदा करने वाली बात है, पता नहीं चलता। बस लोग ज़ाहर बड़े मस्कीन लगते हैं, खुद भी कहते हैं हमारी तो कोई अकड़ नहीं, हम तो अपने आप को कुछ नहीं समझते, लेकिन यकीन करें ज़रा आप उनकी बात ना माने, पता लग जाएगा कि वो कैसे अपने आप के शहर में घूम है। तो हमेशा खुद को छोटा समझें, क्या पता दूसरा कितना अच्छा हो, छुपा हुआ है, कल उसको अल्लाह इल्म दे दे तो आपसे कितना आगे चला जाए, कल अल्लाह उसको अमल की तौफीक दे वो कल कहाँ पहुँच जाए। अब तो एक सेकंड में कुछ होने की उम्मीद है, इतनी तेज़ी से चेंजेस आती हैं दुनिया में, तो आप अपने ऊपर कैसे मान कर सकते हैं? पता नहीं कल आपकी क्या कैफियत हो। अगर आज अल्लाह ने आपको कुछ अक़ल दी, इज़्ज़त दी, कुछ हिकमत दी, कल अक़ल मारी जाए और अल्लाह ना करे ऐसा हो, नेमतों के ज़वाल से अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। अगला टॉपिक है दिन रात मौत के लिए तैयारी करना। लोग कहेंगे ये क्या डिप्रेसिंग बातें हैं, मौत मौत मौत, इसलिए कि मौत ही है आखिर में। जो शख्स इंजाम पर तो नज़र रखता है मगर इसके लिए भरपूर तैयारी नहीं करता, वो भी कामिल अक़ल वाला नहीं। मसलन नाफरमानी, मासी यानी गुनाहों के इंजाम पर नज़र तो है मगर जवानी से धोखा खा रहा है कि अभी तो जवानी है, बुढ़ापे में जाकर तौबा कर लेंगे, ये कहकर रजू इलल्लाह और तौबा करने से टाल मटोल करता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि बुढ़ापे की उम्र को पहुंच भी जाए, बल्कि अचानक किसी आफत की वजह से जवानी ही में लुकमाए अजल बन सकता है। इसी तरह किसी काम में टाल मटोल करने से वक्त हाथ से निकल जाता है और कफ़े अफसोस मलना पड़ती है। अक्लमंदी और दानिशमंदी ये है कि आइंदा आने वाले वाक़े को पेश नज़र रखे और इसके तकाजे के मुताबिक अमल करें। अगर उम्र तवील हुई तो कोई नुकसान नहीं, यानी क्या बिगड़ेगा फिर भी। अगर कोई नामवाफिक हालत पेश आ भी जाए तो इससे बचने के इम्कानात मौजूद ज़रूर होंगे, यानी हमेशा सेफ्टी फर्स्ट रखना चाहिए असूल में। बस दफ़ा लोग किसी हुक्मरान या बादशाह के हाँ मंजूर नज़र होकर इस पर भरोसा करके लोगों पर जुल्म करते हैं, मगर हालत पलट जाती है तो बादशाह इसका दुश्मन बन जाता है और वो लोग जिन पर जुल्म और सितम किया था मौके से फ़ायदा उठाकर बदला लेने को गनीमत समझते हैं, और कभी दोस्तों से नाराज़गी की सूरत में इनके साथ दुश्मनी की हद तक आगे बढ़ जाता है, दोस्ती की परवाह नहीं करता और इसको कमज़ोर पाकर हद से गुजर जाता है। तो यह मुमकिन है कि वो दोस्त ताकत और मर्तबा पाए और साबिका तमाम हिसाब बराबर कर दे। तो अक्लमंदी यह है कि हर काम को करने से पहले इसके इंजाम पर नजर हो। दोबारा बोलो, काम शुरू करने से पहले देखिए कि इंजाम क्या होगा। देखिए, ये गोल सेटिंग तो इस्लाम ने डे वन पे दे दी, इंजाम देख कर सफर शुरू करो। हुदा लिल मुत्तकीन उलाइक हुमुल मुफ्लिहून इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिर्फ शुरू के दो रुकू देख लें, एक अल बकरा का और एक अल फातिहा का, तो ये तीन सबक आपको मिलते हैं। तो ये ना सोचें देखी जाएगी, जो होगा देखेंगे। गाड़ी में बैठते ही चेक करो जा किधर रहे हो, डायरेक्शन किधर की डाली है, मैप कौन सा खोला हुआ है, वरना तो फिर ख्वाहिशों वाले तो पता नहीं किधर पहुंचेंगे, कहीं हाविया में ही ना पहुंच जाए। और किसी से हद से बढ़कर ज्यादती ना हो। इंसान को सोचना चाहिए कि उम्र कमाई का सीजन है, यानी ये जो आपकी मेरी जिंदगी है ना, इसमें ही जो कमा सकते हैं कमा लें, जिसमें मुख्तलिफ तरीके से तिजारत करके कमाई की जाती है। होशियार आदमी कीमती और नफीस शय को तलब करता है। दुनिया में कीमती और नफीस तरीन चीज़ मारफत इलाही है। आरिफ मारफत की कोशिश करता है और बहुत कुछ अमल करके भी इसको कम समझता है, और अमल में रोज़ अफसूं इजाफा करता रहता है। जैसा कि मक्का से लौटने वाला शख्स कसरत से तवाफ करता है, बल्कि हर लहजा को गनीमत जानता है। ख़ास तौर पर वो शख्स जिसको अपनी तंग दस्ती या बुढ़ापे या किसी और कमज़ोरी की वजह से दोबारा आने की उम्मीद ना हो, वो तो हर वक्त तवाफ ही में लगा रहता है। इसी तरह इस शख्स को भी चाहिए कि वो कसरत से अमल करे, हर हर लहजे को इबादत में गुजारने की अनथक कोशिश करे। जिसकी उम्र की कश्ती मौत के साहिल के करीब पहुंच गई है और आज़ाओ कुवात यानी आज़ाते ऑर्गन्स और कुवात ताकत जिस्म यानी जिस्म के अज़ा में और जिस्म के अंदर ताकत नहीं रही कह ले, इस शख्स की ज़िंदगी का क्या मज़ा जो हलाकत के करीब पहुंच गया है। उम्र का हर गुजरने वाला लम्हा उम्र में कमी करता जाता है और मौत सामने है, इसको तो सख्त फिक्र करनी चाहिए। इसको सही बुखारी और मुस्लिम में वारिद इब्ने उमर की ये रिवायत हर वक्त पेश नज़र रखना चाहिए, जिसमें वो फरमाते हैं, तुम में से हर एक को इसका मुकाम जन्नत और दोजख में सुबह शाम इसके सामने पेश किया जाता है, और इसे कहा जाता है कि क्यामे क्यामत तक ये तुम्हारा मुकाम है। समझ आए, यानी कब्र में हर वक्त दिखाया जाता है कि ये जन्नत का घर है या ये जहन्नम। तो सोचिए, धड़कता तो दिल वहीं रहना इतना अरसा, क्यामत तो पता नहीं कब आएगी, कब्र में ही धड़के लगे हुए हैं कि अच्छा भाई इधर जाने वाले हो, और अगर अच्छा इंजाम होना है तो फिर खुशखबरियां भी आएंगी। اللہ ہمارا انجام اچھا کر دے، اللہ ہمیں رسوائیوں سے بچا دے، اللہ ہمیں قیامت کے دن شرمندگی سے بچا دے. بہت سارے لوگ بہت کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی بچ نہیں پاتے. دل کی گہرائی سے سب کے لیے دعا کریں. دیکھیں انسانوں کو نا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، محبت کریں. ہم بعض دفعہ کہتے ہیں گناہگار، خراب، چوریاں کرتے، شراب پیتے. نہیں، یہ ٹون ایک ایمان والے کی نہیں ہو سکتی. آپ کو ہمیشہ دوسرے کے لیے اچھی بات سوچنی ہے، اچھی بات کہیے، اچھی بات سنیے. اور جب آپ انسان کو انسان سمجھیں گے نا، پھر آپ اچھی ہی بات کریں گے، بالکل کریں گے، یقین کیجئے. کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم اگر ذرا سے دل کی نرمی کے ساتھ ٹیکل کریں نا، تو ویسے ہی اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک ٹاپک اور کرتے ہیں، خواہشات نفس کا دھوکہ. حصے انسانی کی خواہشات میں زیادہ خواہش عورتوں کی خواہش ہے. انسان کسی عورت کو خوبصورت لباس میں ملبوس دیکھ کر اس کو اپنی بیوی سے خوبصورت خیال کرتا ہے، اور اس کے حسن کی طرف نظر کرتا ہے، اور وہ اس کے دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے، اور اپنی بیوی کے حسن و جمال کی طرف نظر التفات نہیں کرتا. یعنی بیوی کو نظر بھر کے نہیں دیکھتا، کوئی الفت نہیں ہے اس کے لیے، لیکن دوسروں کے لیے رال ٹپکتی ہے. اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے یا اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے. چنانچہ اگر اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کے ان عیبوں کو دیکھتا ہے، جس کی طرف ان کے بارے میں سوچتے ہوئے خیال نہیں کیا ہوتا. تو پھر ملول، ملول کہتے ہیں اداس، سیڈ اور غمزدہ ہو کر دوسروں کی طرف دیکھنے لگتا ہے، اور یہ نہیں سمجھتا کہ اپنے اغراض کے حصول میں کتنی مشقت برداشت کرنی پڑی ہے. یعنی جتنا کسی کے قریب جائے گا اس کے عیب کھلیں گے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کے اندر کچھ خامی نہ ہو؟ اور نہ بھی ہو تو کچھ نیچرل چیزیں تو ہیں نا. بلکہ کسی کا قول ہے نا کہ اگر کسی عورت کا حسن تمہیں بے چین کر دے تو اس کی گندگی کی طرف سوچو، جو ہر انسان کے ساتھ ہے، تو اس میں سے پھر کشش کم لگے گی. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسری عورت بے دین، بے عقل، بے تدبیر بھی ہو سکتی ہے، تو فائدے کی بجائے سخت نقصان کا اندیشہ ہے. زنا کے مرتکب لوگوں کا یہی طریقہ ہے کہ عورتوں کے پاس بیٹھتے ہیں، جہاں ان کی خوبصورتی ان کی نظروں میں ہوتی ہے مگر ان کی طرف نظر نہیں جاتی. اس وقت ان سے گپ شپ لگا کر لذت حاصل کرتے ہیں، پھر ان کو چھوڑ کر اوروں کی طرف مائل ہوتے ہیں. عقل مند انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کبھی بھی اپنی چاہت کے مطابق تمام مقاصد میں مکمل کامیاب نہیں ہو سکتا. ارشاد ہوتا ہے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تَغْمِزُوا فِيهِ. یعنی تم تو ایسی چیزیں کبھی نہ لو جب تم دوسروں کو دیتے ہو، اور اگر کوئی تمہیں پیش کرے تو تم تو آنکھ بھیج لو گے. جنت میں ملنے والی عورتوں کے مقابلے میں دنیا کی عورتوں کی کیا حقیقت اور کیا نسبت ہے؟ جن کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. دنیا کی عورتیں بدصورت اور برے اخلاق اور عیوب سے بھرپور ہوتی ہیں. تو کیا پتہ چلا، عورت مرد کا ویک پوائنٹ ہے، خاص طور پہ دوسری عورت. اپنی بیوی میں وہی ہے جو دوسرے میں ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی مرد باہر کسی عورت کی خوبصورتی کو دیکھے تو آ کر اپنی بیوی سے خواہش پوری کرے. اسی لیے نا کہ وہ بھی وہی عورت ہے جو کوئی باہر والی ہے. لیکن یاد رکھیے، شیطان کا بہت بڑا کارنامہ کیا ہے کہ وہ دوسری عورت میں کشش پیدا کرتا ہے اور اپنی بیوی کے اندر کوئی کشش نظر نہیں آتی. اور جو چیز پاس ہو انسان کو اس کی ویلیو بھی نہیں ہوتی. چار دن دور رہ کر دیکھے انسان تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا اور بہتریاں تھیں. تو خلاصہ کیا نکلا پھر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر سمجھ رکھی ہے. عقل مند وہ ہے جو گناہوں سے ڈرے، گناہوں کو چھوڑے، اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت دنیا سے جانے والا شخص سمجھے، قیامت کو دور نہ سمجھے. قیامت دور ہے بھی تو موت تو قریب ہے. اور نہ رہنے والی چیز کی خاطر ہمیشہ رہنے والی چیز کو داؤ پہ نہ لگا دے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.